पिछले पाठ में ये था कि इष्ट साधनत्व जो है वही प्रवर्तनात्व है, कृति साध्यत्व और बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व प्रवर्तनात्व नहीं है। तो उसमें एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं यहाँ पर कि आस्तिक कामुकस्य, आस्तिक किसको कहते हैं, जिसको पुनर्जन्म में विश्वास होता है उसे आस्तिक कहा जाता है, जो पुनर्जन्म को मानते हैं वह आस्तिक कहलाते हैं। और आस्तिक कामुक, कामुक कहते हैं कामी व्यक्ति को, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी जो है स्त्री को काम वासना का विषय मानता हो उसको हम कामुक कहते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आस्तिक भी है और कामुक भी है, वह व्यक्ति जानता है कि अगर हम अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो हमें नरक का लाभ होगा, हमें पाप की प्राप्ति होगी। ये जानते हुए भी वह आस्तिक कामुक व्यक्ति जो है फिर भी इस तरह के काम में प्रवृत्त होता है। अब यहाँ पर देखिए कि बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व का ज्ञान उस आस्तिक कामुक को है, उसको पता है कि मुझे जितना इसमें लाभ है उससे ज्यादा हानि है, नरक मिलेगा मुझे, उतना अधिक पाप होगा, फिर भी उस काम को वह व्यक्ति करता है। तो आपने देखा कि ये लाभ कम है हानि ज्यादा है, इस तरह का ज्ञान आस्तिक कामुक को है, फिर भी वह उस काम को करता है। इसीलिए इस चीज को जो है ना प्रवर्तना नहीं मानेंगे कि बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व का ज्ञान जहाँ होगा वहीं पर प्रवृत्ति होगी क्रिया करने में, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि ये देखा गया है कि आस्तिक कामुक को ये ज्ञान रहता है, बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व का ज्ञान, फिर भी वह इस क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो यह लिंग का अर्थ नहीं माना जा सकता। तस्मात इष्ट साधनत्वम एव प्रवर्तना, इसलिए इष्ट साधनत्व जो है वही प्रवर्तना है। उक्तं च मंदन मिश्रेह, मंदन मिश्र के द्वारा भी कहा गया है कि पुंसाम निष्ठाभ्युपायत्वात् क्रियासु अन्यः प्रवर्तकः प्रवृत्ति हेतुं धर्मं च प्रबदन्ति प्रवर्तनाम्। माने प्रवृत्ति का जो हेतु है किसी क्रिया में, जो किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है उसमें जो हेतु है, कारण है, और उस प्रवृत्ति में जो धर्म है उस कारण और धर्म को ही प्रवर्तना कहा जाता है। पुंसाम न इष्ट अभ्युपायत्वात् क्रियासु अन्यः प्रवर्तकः, माने किसी पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है क्रिया में वो यही मान करके प्रवृत्त होती है कि इदम् मदिष्ट साधनम्, ये क्रिया जो है मेरे इष्ट का साधन है, अर्थात इस क्रिया को करने से मुझे इष्ट की प्राप्ति होगी, ऐसा मान करके ही जो है व्यक्ति किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। तात्पर्य ये है कि इष्ट साधनत्व को ही प्रवर्तना मानना चाहिए, कृति साध्यत्व और बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व को जो है प्रवर्तना नहीं मानना चाहिए, ऐसा मंदन मिश्र ने इस कारिका में कहा है। और इसका विस्तार पूर्वक जो है वर्णन व्याकरण भूषण सार में किया गया है। कौन सा व्याकरण भूषण सार? एक ये पहले भी बात आई थी, व्याकरण भूषण सार दो तरह के हैं ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये छोटा वाला है, एक बड़ा वाला भी जो है भूषण सार है, उसमें इस बात को विस्तार से बताया गया है। और उसमें जो यहाँ जो कहा गया था पहले कि लिंग लकार में विधि आदि अर्थ होते हैं, तो वो तो चार अर्थ तो बताए गए, विधि निमंत्रण आमंत्रण और अधिष, और आदि जो कहा गया उस आदि से कौन कौन सा अर्थ लेना है वो यहाँ बताते हैं कि आदि ना हेतु हेतु मतोर लिंग आशीष लिंग लोटो इति सूत्रोक्ता हेतु हेतु मदभाव आदि गृहजनते, ताकि हेतु हेतु मदभाव अर्थ भी आदि शब्द से लेना है, माने लिंग लकार का अर्थ हेतु हेतु मदभाव भी होता है। अब ये हेतु हेतु मदभाव क्या है? हेतु हो गया कारण और हेतु मत हो गया कार्य, तो कार्य कारण भाव जो है उसी को कहते हैं हेतु हेतु मदभाव। तो कार्य कारण भाव भी अर्थ लिंग लकार का होता है। और आशीषी लिंग लोटो, ये जो पाणिनि का सूत्र है इस सूत्र से आशीष अर्थ भी होता है, आशीर्वाद अर्थ भी होता है। इसका उदाहरण दिया, यो ब्राह्मणाय अवगुरेत तम शतेन यातेत, जो ब्राह्मण पर आँख तरेरे अथवा ब्राह्मण को मारे या ब्राह्मण को दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, उनको सतेन यातेत, उनको 100 रुपये का दंड देना चाहिए या 100 दंडे उसको मारना चाहिए। तो यहाँ पर जो अवगुरेत और यातेत में लिंग लकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या है कि हेतु हेतु मदभाव अर्थ प्रतीत होता है कि यदि ऐसा कोई ब्राह्मण के साथ करे तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो ये हेतु हेतु मदभाव अर्थ यहाँ पर लिंग लकार के द्वारा निकलता है। अब लुंग लकार का अर्थ बताया जाता है कि भूत मात्रे इति, माने भूत मात्र अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग होता है। भूत मात्र मतलब भूत सामान्य, भूत सामान्य मतलब चाहे वो अद्यतन हो चाहे अनद्यतन हो, चाहे वह परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, किसी भी तरह का हो, भूत अगर है, भूतकाल अगर है तो वहाँ पर लुंग लकार का प्रयोग होता है। ऐसा है कि भूतकाल वाली क्रिया को बताने के लिए तीन लकार बताए गए, लंग लकार, लिट लकार और लुंग लकार। इसमें लंग में शर्त लगी हुई है, क्या कि अनद्यतन भूत होना चाहिए तभी लंग का प्रयोग होगा। लिट में भी शर्त लगी हुई है कि अनद्यतन होना चाहिए, परोक्ष होना चाहिए तो लिट लकार का प्रयोग होगा। लेकिन लुंग लकार में ऐसी कोई शर्त नहीं है, बस सामान्य भूतकाल खाली होना चाहिए तो उसमें लुंग लकार का प्रयोग होता है। भूते इति अधिकृत्य लुंग इति सूत्रात्, ताकि लुंग सूत्र से लुंग का विधान होता है भूते के अधिकार में, इसलिए लुंग का अर्थ केवल भूतकाल ही होता है, उसमें अद्यतन अनद्यतन परोक्ष प्रत्यक्ष ये सब बात नहीं है। अत्र विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वम भूतत्वम, पहले वर्तमान का लक्षण बताया, भविष्यत का लक्षण बताया, यहाँ पर भूत का भी लक्षण बता रहे हैं कि विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वम, कि अभी जो जिसका ध्वंस हुआ है, ध्वंस कहते हैं अभाव, जिस क्रिया का अभाव अभी हो गया है उस क्रिया का जो प्रतियोगी कालिक क्रिया है, उसका जो प्रतियोगी क्रिया है उसको हम भूत क्रिया कहते हैं। अर्थात अभी जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये वर्तमान है, अभी इस वर्तमान के समय में जिसका अभाव हो चुका है, किसका अभाव हो चुका है, भूतकालिक जो क्रिया है, भूतकालिक जो अध्ययन क्रिया है उसका अभाव हो चुका है, तो वही जो है विद्यमान ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा, भूतकालिक क्रिया ही उसका प्रतियोगी होगा। तो विद्यमान ध्वंस प्रतियोगी त्वम भूतत्वम का मतलब हो गया कि विद्यमान जो ध्वंस, उस ध्वंस का जो प्रतियोगी काल है वही प्रतियोगी काल भूतकाल कहलाता है। तच्च क्रियायाम निर्बाधम, और यह जो विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्व रूप भूतत्व है वह क्रिया में निर्बाध रूप से रहता ही रहता है, इसीलिए विद्यमाने घटे अपि, घड़ा अगर विद्यमान भी है अगर, लेकिन घड़ा की उत्पत्ति होने वाली जो क्रिया है वह अगर भूत हो गई है, माने वह क्रिया खत्म हो चुकी है, तो वहाँ पर घटो भूत इति प्रयोग, घटः अभूत ऐसा लुंग लकार वाला प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घड़ा यहाँ पर विद्यमान है लेकिन घड़ा की जो उत्पन्न होने वाली क्रिया है वह तो नष्ट हो चुकी है, उसका ध्वंस हो चुका है, तो इस तरह से भूतकालिक क्रिया अर्थ रहने यहाँ पर है तो अभूत का प्रयोग, लुंग लकार का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और घटोभूत का शाब्दबोध बताते हैं कि क्या शाब्दबोध होता है, कि विद्यमान ध्वंस प्रतियोगी घटा भिन्नाशय कह उत्पत्त्याजनकूलो व्यापार, ऐसा व्यापार जो विद्यमान ध्वंस का प्रतियोगी है और घट से अभिन्न आश्रय वाला है और उत्पत्ति आदि के अनुकूल है, ऐसा व्यापार यह अर्थ होता है घटोभूत इस वाक्य का। अयम अत्र संग्रह, यहाँ पर जो दस लकारों के अर्थों की बात सब की गई है, ऐसे एक लकार का अर्थ अभी बाकी है लिंग लकार का, तो अयम अत्र संग्रह, ताकि यहाँ पर जो पहले हमने बात बताई है लकारार्थ निर्णय प्रकरण में, यहाँ पर संग्रह के रूप में संक्षेप रूप में मैं बताता हूँ क्या, तो कालो द्विविधः, काल दो प्रकार का होता है, अद्यतन अनद्यतनश्च, एक अद्यतन काल होता है एक अनद्यतन काल होता है, आद्य त्रिविधः, माने अद्यतन काल जो है आद्य काल वह तीन प्रकार का होता है, भूत भविष्यत वर्तमान भेदात, माने अद्यतन भूत, अद्यतन भविष्यत और अद्यतन वर्तमान, इस तरह से अद्यतन काल के तीन भेद होते हैं। अंत्यो द्विविधा, अंत्य हो गया अनद्यतन काल, तो अनद्यतन काल जो है वह द्विविधा दो प्रकार का है, भूत अनद्यतन काल और भविष्यत अनद्यतन काल, तत्र वर्तमानत्वे लट, इसमें वर्तमान काल होने पर लट होता है, भूतत्व मात्रे लुंग, सामान्य भूत अर्थ रहने पर लुंग लकार होता है, भविष्यत्ता मात्रे लिट, सामान्य भविष्यत अर्थ रहने पर लिट लकार होता है, और हेतु हेतु मदभावादि अधिक अर्थ विवक्षायाम अनयो लिंग का के भूत और भविष्यत, ये जो दोनों काल है इसमें अगर हेतु हेतु मदभाव हो, कार्य कारण भाव हो, तो वहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग होता है, ये जो दसवां लकार है लिंग लकार उसका प्रयोग होता है। अनद्यतने भूतत्वेन विवक्षिते लंग, और भूतकाल में अगर अनद्यतन है, अनद्यतन भूतकाल है तो वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग होता है। तथैव परोक्षत्व विवक्षायाम लिट माने अनद्यतन भूत और परोक्ष, ये तीनों जहाँ पर हो वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होता है। तादृशे भविष्यति लुट इति द्रष्टव्य, और अनद्यतन भविष्यत अगर है तो वहाँ पर लुट लकार का प्रयोग होता है। इस तरह से यहाँ पर संक्षेप में सभी लकारों के अर्थों को बताया गया। आगे अब लिंग लकार के अर्थ की बारी है। कहते हैं सत्याम भीति, वो कारिका में जो बताया गया सत्याम क्रियातिपत्तो ही, उसका विवरण यहाँ दे रहे हैं कि क्रियाया अतिपत्ति ही अनिष्पत्ति, क्रिया की अतिपत्ति कारिका में कहा गया, तो अतिपत्ति का क्या अर्थ है याद करिए, मैंने बताया था असिद्धि, तो यहाँ पर असिद्धि शब्द से नहीं कह करके अनिष्पत्ति कहते हैं। माने क्रिया की अगर क्रिया की अतिपत्ति जहाँ हो, अर्थात क्रिया की अनिष्पत्ति जहाँ हो, माने क्रिया की असिद्धि जहाँ हो, तस्याम गम्यमानायाम माने उस अनिष्पत्ति अर्थ के गम्यमान होने पर, बोध्यमान होने पर, भूते भाविनी हेतु मद भावे सति लिंग, वहाँ पर चाहे भूत अनिष्पत्ति हो चाहे भविष्य अनिष्पत्ति हो क्रिया की, वहाँ हेतु हेतु मद भाव रहने पर लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और इसमें पाणिनि का सूत्र है कौन, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंगो निमित्तम हेतु हेतु मद भावादि, ताकि लिंग का निमित्त, सूत्र में कहा ना पाणिनि ने लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो, कि लिंग के निमित्त रहने पर लिंग होता है, तो लिंग का निमित्त क्या होता है तो वही बताया, लिंगो निमित्तम हेतु हेतु मद भाव आदि, हेतु हेतु मद भाव आदि जो है वह लिंग का निमित्त होता है, माने लिंग का अर्थ होता है। अब उदाहरण में इस और क्लियर होगा, यदा सुवृष्टिश्चेत अभविष्य, यथा सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत सुभिक्षम अभविष्यत, यदि सुवृष्टि होती तो सुभिक्ष समय होता, माने वृष्टि जब होती है ना तो अच्छी फसल उपजती है, अन्न ज़्यादा उपजता है, तो ज़्यादा अगर अन्न उपजता है उसको सुभिक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये कहा गया सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत, माने अगर सुंदर वृष्टि होती, ये भूतकाल की बात हो रही है, यदि सुंदर वृष्टि होती तो सुंदर समय भी होता, सुभिक्ष होता। यहाँ अभविष्यत यह पद का प्रयोग है, वह अभविष्यत लिंग लकार का प्रयोग है, और यहाँ पर हेतु हेतु मद्भाव भी है, हेतु हेतु मद्भाव, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, तो यदि यदि लगा हुआ है ना, तो यहाँ कार्य कारण भाव अर्थात हेतु हेतु मद्भाव अर्थ भी है, भूत अर्थ भी है, तो इस तरह से भूत होने पर और हेतु हेतु मदभाव होने पर यहाँ सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत सुभिक्षम अभविष्यत, यहाँ भूत हेतु हेतु मदभाव अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग हुआ है। अब भविष्यत हेतु हेतु मदभाव वाले का उदाहरण देते हैं, बह्निश्चेत प्राज्वलिष्यत ओदनम अपक्षत इत्यादि, माने यदि बहनी जलेगी, माने आग, यदि आग जलेगी तो ओदन पकेगा, तो भात बनेगा। अब यहाँ पर भविष्यत हेतु हेतु मदभाव है, और यहाँ पर भविष्यत हेतु हेतु मदभाव अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग हुआ है, प्राज्वलिष्यत और अपक्षत। तो इस तरह से जहाँ लिंग लकार का प्रयोग हो वहाँ पर दो तरह का अर्थ प्रतीत होता है, एक तो भूत हेतु हेतु मदभाव अर्थ प्रतीत होता है, दूसरा भावी हेतु हेतु मदभाव अर्थ प्रतीत होता है, भावी माने भविष्यत। अब इसका शाब्द बोध क्या होगा, तो अत्र बहनी अभिन्न आश्रयक प्रज्वलनानुकूल व्यापाराभाव प्रयोज्य ओदनाभिन्नाश्रयक विक्लित्यनुकूल व्यापाराभाव इति शाब्द बोध। ये बहनिश्चेत प्राज्वलिष्यत ओदनम अपक्षत, ये जो वाक्य है इसका अर्थ क्या होगा, शाब्द बोध क्या होगा, तो कहते हैं कि बहनी से जो अभिन्न आश्रय है वह आश्रय वाला जो प्रज्वलन, उस प्रज्वलन के अनुकूल जो व्यापार, उस व्यापार का अभाव से जो प्रयोज्य हो, माने अभाव से होने वाला जो हो क्या, तो ओधन से अभिन्न आश्रय वाली जो विकलित्ति, उस विकलित्ति के अनुकूल जो व्यापार, उस व्यापार का जो अभाव है, यही शाब्द बोध होता है बहनिश्चित प्राज्वलिष्यत ओधनम अपक्षत का, एवं रीत्या द्रष्टव्यम, कहा कि इसी तरह से साधबोध को देखना चाहिए। अयंच अर्थ निर्देश उपलक्षणम, कहा कि यहाँ जो हमने लकारार्थ निर्णय में 10 लकारों के अर्थ बताए हैं ये सब उपलक्षण है, उपलक्षण है मतलब ये अर्थ तो होते ही हैं, इसके अलावे भी जो है ना लकार के अपने अपने कुछ और विशेष विशेष अर्थ होते हैं, अर्थांतरेपि बहुशो विधान दर्शनात्। अन्य अर्थ में भी जो है इन लकारों का विधान पाणिनी ने किया है। आपने एक प्रकरण देखा होगा सिद्धांत कौंज में लकारार्थ प्रक्रिया, तो उस लकारार्थ प्रक्रिया में उन विशेष अर्थों को भी बताया गया है जो कि इन लकारों के विशेष अर्थ होते हैं। तो यहाँ जो अर्थ बताया गया इस भूषण सार में ये सामान्य अर्थ बताया गया है, इसलिए कहा कि ये उपलक्षण है, अर्थात ये अर्थ तो होते ही होते हैं, इसके अलावे भी लकारों के अर्थ होते हैं, क्योंकि अन्य अर्थों में भी लकारों का विधान सिद्धांत कौमुदी में लकारार्थ प्रक्रिया में बताया गया है। प्रसिद्धत्वादेशु एव अर्थेषु शक्ति अन्यत्र लक्षणा इति मतांतर रीत्या वा उत्तम। इसमें कुछ मतांतर भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रसिद्ध अर्थ यहाँ बताए गए हैं यही अर्थ हैं, बाकी जो विशेष अर्थ की आप बात कर रहे हैं वहाँ में वहाँ शक्ति नहीं होती, वहाँ लक्षणा से उन अर्थों की प्रतीत होती है, ऐसा मतांतर भी यहाँ पर मिलता है। एतेषां क्रम नियामकश्च अनुबंधक क्रम एवं, ताकि यहाँ जो ये जो दस लकार हैं इसमें पहले नंबर पर लट है, दूसरे नंबर पर लिट है, तीसरे नंबर पर लुट है, यह जो क्रम है इस क्रम के पीछे क्या विज्ञान है, तो कहा कि ये अयुन रिलदिक एवं एच वाला जो है नहीं, एतेषां क्रम नियामकश्च अनुबंध क्रम एवं, माने अनुबंध जो लगा हुआ है, जैसे लट में अनुबंध क्या है ट, लिट में क्या है ट, लुट में क्या है ट, और इतना ही नहीं, फिर लंग में लट में ल में जो अ है, लिट में ली में ई है, लुट में ल में उ है, तो यह जो अनुबंध लगा हुआ है अ ई उ, आप जब माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या है अ ई उन री लिक, पहले नंबर पर अ फिर ई फिर उ फिर री, यही है ना, यहाँ लकार में भी यही क्रम है, लट ल में अ है, लिट ली लिट में ई है, लुट लुट में लूम का ऊ है, तो अ ई उ हो गया ना, अब रिलिक है तो फिर लट लिट लुट के बाद लिट का नंबर है चौथे नंबर का, लिट में लिरी में री लगा हुआ है, तो माहेश्वर सूत्र का जो क्रम है वही उसमें माहेश्वर सूत्र के वर्ण अनुबंध रूप में लकारों में लगे हुए हैं, और उन्हीं अनुबंधों के क्रम के आधार पर लकारों का क्रम बनाया गया है। अतएव पंचमो लकार इतनेन मीमांसक लेट व्यभ्रियते, इसलिए मीमांसक लोग लेट लकार को पांचवा लकार मानते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में देखिए ए जो है वो पांचवें नंबर पर है, अ ई उ री और री ली को एक ही माना जाता है, उसके बाद है ए ओंग, तो ए का नंबर पांचवा नंबर है, तो और पांचवें नंबर पर लकार में लेट लकार आता है, तो लेट लकार को इसीलिए मीमांसक लोग अनुबंध के आधार पर ही पांचवा उसको मानते हैं। तो ये जो दस लकार हैं ऐसे ही लंग लिंग लुंग लिंग में भी है, लंग में ल में अ है, अ के बाद ई है, ई आता है तो लंग लिंग, फिर उ आता है तो लुंग, फिर री आता है तो लिंग, तो अ ई उ री ए, ये जो माहेश्वर सूत्र का क्रम है वही सब लकारों में अनुबंध का लगा हुआ है, और उसी अनुबंधों के क्रम में लकारों का क्रम यहाँ पर दस लकारों का सजाया गया है, यही बता करके यहाँ पर लकारार्थ निरूपण प्रकरण जो है उसकी समाप्ति होती है। आगे अब एक प्रकरण और बचा है सुबर्थ निर्णय प्रकरण, उसको हम आगे पढ़ेंगे।